नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को आम चुनाव में बड़ी जीत के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से चार दिन के ओडिशा दौरे पर। विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा आज देश के 50 शहरों में आयोजित की जा रही है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर 285 करोड़ टन से अधिक के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान। और पहले महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 12 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को आम चुनाव में बड़ी जीत मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि भारत और ब्रिटेन आर्थिक विकास और खुशहाली देने के लिए सभी क्षेत्रों में साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी उनके सराहनीय नेतृत्व और भारत ब्रिटेन संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। कीर स्टार्मर की जीत के साथ ही ब्रिटेन में टोरी दल के 14 वर्ष का शासन समाप्त हो गया है। आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती, कंजर्वेटिव पार्टी को केवल 121 सीट मिली। इस बीच कीर स्टार्मर ने अपने मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया है। एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री और राचेल रीव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनाया है। मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों में रिकॉर्ड 11 महिलाएं हैं। कीर स्टार्मर ने भारतीय मूल के सांसद लीजा नंदी को संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया है। 44 वर्षीय लीजा ने उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के वाइगन सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। वे वर्ष 2020 में लेबर पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के लिए तीन प्रमुख दावेदारों में भी शामिल थीं। सुश्री लीजा कोलकाता के जाने माने शिक्षाविद दीपक नंदी के सुपुत्री हैं। ब्रिटेन में हाल के चुनाव में निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भारतीय मूल के 29 सांसद निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से चार दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। वे भुवनेश्वर में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल पुरी में भगवान जगन्नाथ के गुंडीचा यात्रा में भी शामिल होंगी। वे उदयगिरी गुफाओं का दौरा करेंगी और विभूति कानून को कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तथा उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से दो दिन के केरल दौरे पर हैं। वे आज भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री धनखड़ संस्थान के मेधावी छात्रों को उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। वे कल कोल्लम और अष्टमुंडी पश्चजल का दौरा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे अहमदाबाद और गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे आज गोधरा की पंचामृत डेयरी में राज्य के सभी जिला सहकारी बैंकों और डेयरी अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE आज देश के 50 शहरों में 71 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है।
ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और दो पारी में होता है। कहीं से ऐसे कुछ खबरें आई, स्पेशली केरला में एक FIR भी लॉन्च हुई कि कुछ जो है चैनल ऐसे चला रहे हैं कि अगर आप हमारे पास पेपर उपलब्ध है, आंसर की भी उपलब्ध है, हमारे पास आइए। ये बिल्कुल ही गलत है। इस पे NBE ने भी एक क्लेरिफिकेशन निकाला है। और जब पेपर बनता है तो सीधा सेंटर पे ही जाता है, जो कि परीक्षा जब जो है 9 बजे शुरू होती है तो वहीं पर कैंडिडेट है, उसके सामने ही उसके पासवर्ड से खुल सकता है। उस बीच में और किसी को ये पेपर उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है, तो इस पे ना पड़े।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने भी सोशल मीडिया के भ्रामक खबरों को अनदेखा करने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से प्रश्न पत्र हासिल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 11 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। यह परीक्षा पिछले महीने होनी थी, लेकिन कुछ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लगे आक्षेप के कारण इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस भगदड़ के सिलसिले में देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया है। 2 जुलाई को मचे इस भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट में देव प्रकाश को इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया था। देव प्रकाश की जानकारी देने के लिए 1,00,000 रूपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। भगदड़ मामले में पुलिस सत्संग आयोजन समिति के 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना कथावाचक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने इस वर्ष 285 करोड़ टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया है। कृषि संगठन के अनुसार अर्जेंटीना, ब्राजील, तुर्की और यूक्रेन में मक्का उत्पादन अच्छा रहने की संभावना है। एशिया में गेहूं उत्पादन बेहतर रहेगा। चावल का भी रिकॉर्ड 53,50,00,000 टन से अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। अनाज के कुल उत्पादन में चावल और मोटे अनाज की हिस्सेदारी अधिक रहेगी। सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतें स्थिर हो रही हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस सत्र में प्याज का उत्पादन कम होने के बावजूद घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता है। इस वर्ष रबी मौसम में 191,00,000 टन प्याज का अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही खरीफ प्याज का उत्पादन 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। परिवार पेंशन शिकायत निपटान संबंधी विशेष अभियान के पहले सप्ताह में 1,000 से अधिक मामले निपटाए गए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के परिवार पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से 1 माह का विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा वित्त विभाग और रेल मंत्रालय शामिल हैं। तमिलनाडु में कल मोटरसाइकिल सवार 6 लोगों ने बहुजन समाज पार्टी नेता के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के सामने हत्या कर दी। हमले के समय श्री आर्मस्ट्रांग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने श्री आर्मस्ट्रांग को दोषियों की एक मजबूत आवाज बताया और दोषियों को सजा देने की मांग की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में इस हमले की निंदा की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की है। ईडी ने मेसर्स यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। छापेमारी में नकद, कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जांच से पता चला है कि सभी तीनों कंपनियों ने निविदाएं हासिल करने के लिए ताइवान प्रोजेक्ट से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र दिल्ली जल बोर्ड को जमा किया और इसे बिना किसी सत्यापन के स्वीकार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभियान का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस से की जा रही है। एक रिपोर्ट।
एक पखवाड़े के अंदर सिर्फ भोपाल जिले में ही 480 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर आज 12,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। भोपाल नगर निगम द्वारा 300 स्थानों पर पौधे लगाने के लिए सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और देश के स्वच्छतम शहर इंदौर में कल से 51,00,000 पौधे लगाने की योजना है। राज्य के सभी शहरों और गाँव में 15 जुलाई तक एक पेड़ मां के नाम अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित किया जाएगा। संजीव आकाशवाणी समाचार भोपाल।
मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने आज से सोमवार तक ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र और 9 जुलाई तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिजली कड़कने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की भी मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में कल रात हल्की से मध्यम बारिश हुई और दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
स्पेन और फ्रांस यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से पराजित किया। स्पेन के लिए डानी ओल्मो और माइकल मरीनो ने गोल किए। जर्मनी की ओर से एकमात्र गोल फ्लोरियन विट्ज ने किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में 3-5 गोल से पराजित कर दिया। अन क्वार्टर फाइनल में आज रात 9:30 बजे से इंग्लैंड का सामना स्विट्जरलैंड से और रात 12:30 बजे नीदरलैंड का मुकाबला तुर्की से होगा। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई को जर्मनी के म्यूनिक में और दूसरा सेमीफाइनल 10 जुलाई को डॉर्टमुंड में खेला जाएगा। फाइनल 14 जुलाई को बर्लिन में होगा। इस बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट श्रृंखला में पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 12 रन से हरा दिया। चेन्नई में कल 190 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 189 रन बनाए थे। दूसरा मैच कल चेन्नई में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में 3-0 से और एकमात्र टेस्ट में 10 विकेट से हराया था।
22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 दिन की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच बहुमुखी संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
धन्यवाद लवलीन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत की खबरें सभी अखबारों में हैं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, ऋषि सुनक चुनाव हारे, की स्टारमर 58वें प्रधानमंत्री बने। दैनिक भास्कर ने इसे कंजर्वेटिव पार्टी की 190 साल में सबसे बुरी हार बताते हुए लिखा है कि लेबर पार्टी ने 400 सीटों का आंकड़ा पार किया। पत्र के अनुसार इस चुनाव में पहली बार ब्रिटेन की संसद में कई सांसद भारतवंशी होंगे। केंद्र सरकार नीट यूजी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं, हिन्दुस्तान की पहली खबर है। पत्र लिखता है 8 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों पर ISI मार्क अनिवार्य, सरकार के इस निर्देश को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस ओलंपिक जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात को दैनिक जागरण ने पहली खबर बनाते हुए श्री मोदी की सलाह को दिया है कि चकाचौंध में खोए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हरिभूमि लिखता है पीएम ने दिया विजय का मंत्र, कहा आप सबके दिल में देश और तिरंगा हो, यही जीत का रास्ता। 2020 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के मुंबई में हुए जबरदस्त स्वागत के बाद के चित्रों को देते हुए राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, बोतल, कागज और जूते चप्पल विक्टरी परेड के बाद मरीन ड्राइव पर करीब 11.5 टन कचरे का अंबार लग गया, जिसे 125 लोगों की टीम ने मिलकर रात भर सफाई अभियान चला करके साफ किया है। लवलीन,
धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को आम चुनाव में बड़ी जीत के लिए बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा आज देश के 50 शहरों में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर 285 करोड़ टन से अधिक के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान। और पहले महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 12 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।